आरव आयु को माहिरा के यहाँ से बचाकर ले आया था। माहिरा ने उसे स्लो पॉइजन दिया था और इस वक्त उसका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में हो रहा था। आर्या ने उसे ट्रीट कर दिया था, फिर उसने आरव को अकेले में बात करने के लिए बाहर बुलाया। आरव समझ गया था कि आर्या जरूर उससे आयु के सिलसिले में ही बात करना चाहता होगा। कुछ ही देर में वो दोनों हॉस्पिटल के बाहर गार्डन की बेंच पर बैठे हुए थे। आरव और आर्या दोनों ही नीचे की तरफ देख रहे थे। कुछ देर की चुप्पी के बाद अचानक आरव ने कहा, इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? मुझे पता है तुम यहाँ किस बारे में बात करने के लिए मुझे लेकर आए हो। मैं किसी भी हाल में अपने कदम पीछे नहीं लेने वाला। अगर बात मॉम की हो फिर भी नहीं क्या? आर्या ने पूछा। आरव ने मामी सिर हिलाकर कहा, मुझे उसे प्रोटेक्ट करना आता है और मैं कर लूँगा। तुम और बाकी सब कब काम आओगे? मुझे ताने देने के लिए मेरे साथ नहीं आए हो, मेरे काम आओ। तुम मेरे बेटे हो और मुझे यहाँ पर बैठकर सुना रहे हो। उस औरत ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा और मैं बदला लेकर रहूँगा। आरव की आवाज़ काफ़ी सख्त थी और उसके इरादों से साफ था कि वो किसी भी हाल में पीछे नहीं हटने वाला है। आर्या ने गहरी सांस लेकर कहा, आज उनकी जान जा सकती थी, आपको एहसास भी है इस बात का? अच्छी तरह एहसास है। क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता कि लास्ट बर्थ हम मर गए और तुम्हें अकेले रहना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ उस औरत की वजह से? तुम्हारा पता नहीं, लेकिन जब मैं उसे देखता हूँ तो मेरा खून खौलने लगता है। आरव ने अपने दिल की बात आर्या के सामने रखी। आर्या कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप था, वो कुछ और ही सोच रहा था। लगभग 5 मिनट बाद उसने आरव की बात के जवाब में कहा, बहुत बुरा लगता है, पर साथ में डर भी लगता है कि मैं फिर से आप दोनों को खो ना दूं। आरव ने आर्या के कंधे पर हाथ रखकर उसे सहलाया और फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरी आंखों में देखो आर्या। इसी के साथ आरव और आर्या का आई कॉन्टैक्ट हो गया था। आरव ने फिर सख्त आवाज में कहा, अपने डैड पर यकीन करो, तुम उम्र में मुझसे बड़े हो। जब तक मुझे कुछ याद नहीं आया तब तक हो सकता है तुम मुझसे ज्यादा समझदार रहे होंगे या अब भी हो, पर एक बात याद रखना, मुझसे ज्यादा आयु को कोई प्यार नहीं कर सकता और उसे खोने का डर मुझसे ज्यादा किसी और के दिल में नहीं हो सकता। साथ चाहिए लिटिल बेबी, हमेशा की तरह, रोक टोक मत करो। आरव बचपन में आर्या को लिटिल बेबी कहकर बुलाया करता था। आर्या के चेहरे पर अचानक मुस्कुराहट आ गई और उसने हाँ में सिर हिलाया। वो गहरी सांस लेकर बोला, आप आज भी उतने ही जिद्दी हो, किसी की सुनते क्यों नहीं हो? देखना, जिस दिन मॉम को सब कुछ याद आएगा ना, तब वो आपकी अच्छे से खबर लेगी। मुझे भी उसी दिन का बेसब्री से इंतजार है, आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया। कहाँ आर्या आरव को समझाने के लिए अलग लेकर आया था, लेकिन अब आरव ने उसे अपना साथ देने के लिए मना लिया था। वो दोनों वापस अंदर गए। पहले आर्या ने आरव को आयु से मिलने की इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन बातचीत होने के बाद उसने आरव को आयु से मिलने के लिए भेज दिया था। आरव रूम में पहुंचा तो उसने देखा आयु गहरी नींद में थी, उसके चेहरे पर कमजोरी दिखाई दे रही थी। आरव उसके पास आया और उसके बालों को सहलाकर कहा, बहुत ब्रेव हो तुम मिसेस खुराना, देखना बस कुछ टाइम की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। आरव आयु से बात कर रहा था तभी उसके पास माहिरा का कॉल आया। आरव ने बिना सोचे समझे कॉल रिसीव कर लिया था। दूसरी तरफ से माहिरा ने कहा, मुबारक हो आरव, आज तुमने अपनी वाइफ को बचा लिया, पर हर बार नहीं बचा पाओगे। आज बचा पाए क्योंकि मैं चाहती थी कि वो जिंदा रहे। ठीक है, अब ज्ञान मत दो, मेरा मूड नहीं है ये सब सुनने का, सीधे सीधे बताओ किस लिए कॉल किया है, आरव ने इरिटेट होकर कहा। उसकी बात सुनकर माहिरा ने आइस रोल की और फिर खुद को शांत करके कहा, प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात करनी है, अभी भी टाइम है, पीछे हट सकते हो आरव खुराना, जानते हो ना मेरे इरादे क्या हैं, लीगली कुछ भी आगे नहीं बढ़ा है। आरव खुराना ने अपने कदम पीछे लेना नहीं सीखा है माहिरा लूथरा, बाकी चीज़ें अपनी जगह और बिजनेस अपनी जगह है। बिजनेस को लेकर मैं इस बार बहुत पैशनेट हूँ, मैं इन्वेस्टर से मिल लिया हूँ और मुझे इस प्रोजेक्ट को लेकर कोई भी डाउट नहीं है, पेपर्स तैयार करवाओ, मुझे इससे जुड़ना है। आरव ने बिना सोचे समझे सीधे हाँ कह दी थी, तो वहीं माहिरा को भी हैरानी हो रही थी। माहिरा ने उसके बात पर हामी भरी और कॉल कट कर दिया। वैसे भी इन सब में उसी का फ़ायदा था, आरव उसके पास जो रहने वाला था। कॉल कट होते ही आरव के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। उसने उसी अंदाज में कहा, गंदगी को साफ करने के लिए कई बार उसमें हाथ डालकर गंदे करने पड़ते हैं, और तुम्हारे करीब आना है तो बहाना तो चाहिए होगा ना माहिरा लूथरा, अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो माही, आज से तुम्हारी बर्बादी शुरू हो चुकी है। आयु को देखने के बाद आरव जल्दी से बाहर आया और कबीर से बोला, तुम माहिरा से दूर थे इस वजह से उसके इन सालों के एक्टिविटीज के बारे में ठीक से नहीं जानते, पहले पूरा पता लगा कराओ। हाँ, मुझे पता नहीं था अब वापस आओगे, इसलिए मैंने उन पर नज़र रखना छोड़ दिया था, थोड़ा टाइम दीजिए, इतने में वो भी केयरलेस हो जाएगी और हम उनके बारे में पता भी लगा लेंगे, कबीर ने जवाब दिया, जिस पर आरव ने हामी भर दी थी। आयु को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए लगभग एक हफ्ता बीत चुका था। इस एक हफ्ते में आरव ने उसके अच्छे से देखभाल की थी, अब वो पूरी तरह ठीक हो गई थी और आरव से हॉस्पिटल जाने की जिद कर रही थी। आयु आरव की तरफ घूरते हुए देखकर बोली, देखो आरव, तुम मुझसे मेरी स्टडी बीच में नहीं छुड़वा सकते हो। मैंने तो कभी तुम्हें नहीं कहा कि वो माहिरा तुम्हें रोज मिलती है तो तुम ऑफिस नहीं जाओगे। ये नहीं चलने वाला। मैं आज हॉस्पिटल जा रही हूँ। इससे ज्यादा मैं और क्लासेस मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकती। कम ऑन मिसेस खुराना, तुमने कोई क्लास मिस नहीं की है। सब कुछ तो ऑनलाइन अटेंड करती रहती हो और सारे दिन किताबों में डूबी रहती हो। डॉक्टर बनने के लिए ज्यादा पढ़ना पड़ता है, पर यह भी नहीं कि आसपास का कुछ होश ही न रहे। मैंने कह दिया, जब तक मैं माहिरा की तरफ से पूरी तरह बेफिक्र नहीं हो जाता, तुम्हें घर से बाहर कदम भी नहीं रखने दूंगा। आरव ने सख्ती से कहा। वो माहिरा के आसपास रहता था, लेकिन फिर भी आयु को लेकर उसे कोई चांस नहीं लेना था। आयु ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, अच्छा ठीक है, तो मुझे रोज लेने आ जाना और फिर ड्रॉप भी कर देना। अब तो खुश हो? पर मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ और ना ही मेरे पास इतना टाइम है। देखो जिद मत करो, जितना कहा है उतना करो, आरव ने चिढ़कर जवाब दिया। बहुत हो गया तुम्हारा। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो बॉडीगार्ड हायर करके दे दो। अपने उस कबीर को बोल दो, किसी से भी कहो, आई डोंट केयर, पर मुझे हॉस्पिटल जाना है और तुम मुझे रोक नहीं पाओगे, आयु ने अपनी जिद पर रखते हुए कहा। उसने कपड़े निकाले और तैयार होने के लिए बाथरूम में चली गई थी। कुछ देर में आयु तैयार होकर बाहर निकली। आरव उसे रोकता उससे पहले वो उसे पूरी तरह इग्नोर करके नीचे जाने लगी। आरव उसके पीछे नीचे आ रहा था। वहीं प्रिया ने जब आयु को ठीक देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अब उन्हें आरव की कहानी पर यकीन हो गया था, क्योंकि आरव ने उसे अपनी पुरानी पिक्चर दिखाई थी। अच्छा हुआ तुम नीचे आ गई, वरना बंद कमरे में रहकर इंसान वैसे भी बीमार हो जाता है। बाहर जाने का सोच रही हो बेटा? प्रिया ने बड़े प्यार से पूछा। हाँ, हॉस्पिटल जाने का सोच रही हूँ, पर आपका बेटा है कि मुझे कहीं जाने नहीं दे रहा। प्लीज मॉम इसे बोलिए ना, आयु ने प्रिया से हेल्प मांगी।
आरव कुछ कहता उससे पहले प्रिया उसे डांटते हुए बोली, हाँ तो क्या गलत है इसने? ड्राइवर इसे छोड़ाएगा और शाम को तुम इसे पिक कर लेना। तुम्हें ज्यादा ही डर है तो पीछे गार्ड्स की गाड़ी भी भेज देना। आरव की दादी जसलीन ने भी प्रिया की बात पर हाँ सहमति जताई, जिसके बाद आरव आयु को भेजने के लिए मजबूर हो गया था। उसने इरिटेट होकर कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन मैं ही तुम्हें ड्रॉप करूंगा और मैं ही पिक करने आऊंगा। उसके अलावा तुम हॉस्पिटल के बाहर कदम भी नहीं रखोगी। आरव के हाँ कहते ही आयु खुश हो गई। उसने तुरंत आरव के गाल पर किस किया, उसे गले लगा लिया। उसकी हरकत पर आरव के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, तो वहीं प्रिया और जसलीन भी उसे देखकर हल्का स्माइल कर रही थी। ब्रेकफास्ट के बाद आरव ने आयु को हॉस्पिटल ड्रॉप किया। उसने आयु को सख्त हिदायत दी थी कि वो हॉस्पिटल से बाहर उसके बिना कदम भी ना रखे। आरव को शक था कि जरूर माहिरा ने आयु के पीछे किसी को लगा रखा होगा, और उसका शक बिल्कुल सही था। जैसे ही आयु हॉस्पिटल पहुंची, माहिरा के पास इसकी खबर पहुंच चुकी थी। हालांकि अभी माहिरा ने आयु के अगेंस्ट कुछ करने का सोचा नहीं था, फिर भी वो उसकी कोई भी हरकत को मिस नहीं करना चाहती थी। वहीं आरिफ के जाने के बाद आयु मुस्कुराते हुए हॉस्पिटल के अंदर जा रही थी। वो काफ़ी खुश थी कि फाइनली उसे फिर से अपनी स्टडी कंटिन्यू करने का मौका मिल रहा है। तभी उसकी नज़र सामने से आ रही डॉक्टर नेहा पर पड़ी। डॉक्टर नेहा वही थी जो आरव की थेरेपी की और उसने उसकी पिछले जन्म की यादों को याद दिलाया था। अचानक आयु को कुछ सूझा और वो अपने वार्ड में जाने के बजाय वक्त नेहा के पीछे जाने लगी। आयु के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो आप समझ ही गए होंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। पाठ पढ़कर कॉमेंट कर दीजिएगा। अगले पाठ पर मिलते हैं।